أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل من غروب الشمس إلى السماء الدنيا ويقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، معزز فردان شین خواتین اور مکسلر وغیرہ پر سننے والے تمام ہی احباب سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل شب برات کے فضائل اور احکام اعمال اور اس موقع سے ہونے والے منکرات کے تعلق سے دینی رہبری اور رہنمائی کی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی. فضائل کے تعلق سے انشاءاللہ احقر کچھ عرض کرے گا، اس کے بعد مفتی رضا الرحمن عابد صاحب کا احکام و منکرات کے تعلق سے بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد انتہائی مختصر ادارے کے مالی تعاون کے سلسلے میں اپیل کی اور گزارش کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. آج کی یہ شب شعبان کی 15ویں شب ہے اور اس کی اسلام میں اہمیت اور فضیلت ہے. اس کو بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں اور خطبات و مباحث کے اندر کئی نام دیے ہیں. اس کا نام لیلۃ الحیات ہے، لیلۃ الکفارہ ہے، لیلۃ المغفرہ ہے، لیلۃ رفع الاعمال ہے، لیلۃ التقسیم ہے، لیلۃ المغفرہ ہے، لیلۃ البراءہ ہے. یہ سارے آج کی رات کے نام ہیں جو بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائے. آج کی اس رات کی اہمیت اور اسلام میں اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں امت میں حد میں رہنے والے، حد سے گزرنے والے اور حد پار کرنے والے تین قسم کے طبقے پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ آج کی اس شب کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اس کی فضیلت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دلیل آج کی رات کے اہم ہونے، خاص ہونے اور مرتبے والی ہونے کی کوئی دلیل آج کی اسلام میں موجود نہیں ہے. ان کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے، ان کی یہ بات کہاں تک صحیح ہے، اس کو ہم ذہنوں میں رکھنے کی ضرورت ہے. احادیث کے اندر آج کی رات کی فضیلتیں وارد ہیں، اس کی خصوصیت وارد ہے، ثابت ہے. جن حدیثوں سے ثابت ہے ان حدیثوں کا درجہ تھوڑا سا کمزور ہے صحت و استناد کے حوالے سے. لوگوں کو آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی یا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس غلط فہمی میں ڈالا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ہر چیز یا تو صحیح حدیث سے بتاؤ یا پھر اس کا انکار کر دو. ہر چیز یا تو صحیح حدیث سے بتاؤ یا پھر اس کا انکار کر دو، یعنی درجے کے اعتبار سے جو صحیح حدیث ہے اس کا. دیکھیں، حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے مقابلے میں غلط حدیث ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا. صحیح علم اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے، ٹرمز ہے ایک. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں حدیث کے ثابت ہونے کی جو شرائط ہیں وہ شرائط پوری طرح اس کے اندر پائے جاتے ہیں، आप अलैहि सलाम से इसके साबित होने में शक्को शुबा नहीं है, ये मतलब होता है सही का। इसके मुकाबले में हसन दर्जे की, ज़ईफ़ दर्जे की जो रिवायतें आती हैं उनका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। उम्मत को ये बावर करवाया जा रहा कि सही के अलावा बाकी सब गलत है। अगर ऐसा किया जाएगा तो दीन के बहुत से हिस्से से हाथ धोना पड़ेगा। असल में यह है कि दलील जिस दर्जे की होती है उस दर्जे का हुक्म उसे साबित किया जाता है। अकीदा जैसी चीज है तो उसके लिए कतई दलील चाहिए। फर्ज दर्जे की कोई चीज है तो उसके लिए कतई दलील चाहिए। सुन्नत दर्जे की कोई चीज है तो कतई दलील की जरूरत नहीं है। सुन्नत से निचले दर्जे का कोई हुक्म है, फजीलत वाली कोई बात है तो ज़ईफ़ रिवायतों से भी उसमें काम चलता है, उसका सबूत हो जाता है। हम बोले कि फजाइल के अंदर भी अगर कतई दलील चाहिए तो ये गुमराही वाला रास्ता है। अकाइद को भी हम अगर ज़ईफ़ से साबित करना शुरू कर दें तो गुमराही वाला रास्ता है। तो हर चीज को अपने हद में रखने की जरूरत है। आज की रात के आमाल और फजीलत के ताल्लुक से जो बातें भी मरवी हैं उनको कौन आज फर्ज करार देता है? मोतदिल जो लोग हैं उनमें से कोई भी इसको फर्ज नहीं बताता, वाजिब नहीं बताता। तो फिर इसके लिए सही हदीस का इसरार करना कि सही हदीस में दिखाओ, अगर दिखा सके तो ठीक है, हम मानने तैयार हैं, और अगर सही हदीस मौजूद नहीं है तो हम इसका सिरे से इनकार करते हैं। ये तो ऐसे ही बात है, रिश्तेदार कई किस्म के होते हैं, बहुत करीबी, उनसे कुछ दूर के और उनसे कुछ दूर के। जो दूर के रिश्तेदार हैं वो रिश्तेदार तो हैं, रिश्ते का इनकार कैसे कर सकोगे? दूर के हैं इसलिए हम रिश्तेदार नहीं मानते। सही हदीसों का किस्सा भी ऐसे ही है, हदीसों की जो तकसीम है इसका दर्जा भी ऐसे ही है। जहन में रखिए कि सही हदीस और हसन दर्जे की हदीस और ज़ईफ़ हदीस, इन तीनों के हदीस होने पे अइम्मे इस्लाम का इत्तेफाक है। ज़ईफ हदीस हदीस है। उम्मत को जो मुगालता दिया गया ना, जो चकमा दिया जा रहा, जो गलतफहमी में मुब्तला किया जा रहा, वो ये कि सही के अलावा जो है वो हदीस नहीं है, ये गलत फहमी है। जो हदीस नहीं होती उसका नाम है हदीसे मौजूर, उसका नाम हदीसे ज़ईफ़ नहीं है। तो हदीसे मौजूर को और हदीसे ज़ईफ़ को एक दर्जे में रख देना, ये कहां का इंसाफ है? जिन मुहद्दिसीन की इस्तलाहात का हवाला देके हम इसरार लोग इसरार करते हैं कि सही हदीस दिखाओ, उन्हीं मुहद्दिसीन ने क्या ये दर्जा बंदी नहीं की है कि मकबूल हदीस की किस्म ही ज़ईफ है? उन्हीं का बयान करता उसूल है कि जो हदीसें एक किस्म हदीस की वो है जो कुछ कबूल की जाती हैं, दूसरी किस्म वो है जो कबूल नहीं की जाती है। जो हदीसें कबूल की जाती हैं उनमें से एक दर्जा ज़ईफ का भी है। अब उसमें यह है कि इस दर्जे की हदीस से कैसा हुक्म साबित होगा, सुन्नत लेवल का, मुस्तहब लेवल का, वाजिब के फर्ज के लेवल का या अकीदे का, ये चीज समझने की है। तो यहां जिस दर्जे का हुक्म होता है उस दर्जे की दलील तलाश करने की जरूरत है। अगर कोई अकीदे के वास्ते कहे कि कतई दलील दिखाओ, उसका मुतालबा दुरुस्त है। फर्ज हुक्म के वास्ते ये कहे कि कतई दलील दिखाओ, हदीस सही दिखाओ, मुतालबा दुरुस्त है। और जो दावा करेगा कि हाँ ये फर्ज है तो उसको बताना भी पड़ेगा कि हाँ इसके लिए सही हदीस मौजूद है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि ये काम मुबाह है, ये मुस्तहब है, ये सुन्नत है, ये फजीलत वाला काम है, इसका इतना सवाब है, इसका इतना अजाब है, उसके वास्ते अगर कोई ये सवाल करे कि सही हदीस दिखाओ, कतई दलील दिखाओ, तो उसको हदीस दिखाने की जरूरत नहीं है, उसका इलाज कराने की जरूरत है। ऐसे आदमी को दलील बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे आदमी की इल्मी इस्लाह की जरूरत है। इलाज से मुराद डॉक्टर ही इलाज नहीं है, इल्मी इस्लाह की जरूरत है कि उसको पता नहीं है। खाने हर किस्म के होते हैं, खानों का की तासीर अपनी होती है, किसी के जरिए से दिमाग को तकबीयत मिलती है, किसी से दिल को तकबीयत मिलती है, किसी से पेट में ठंडक पड़ती है, किसी से पेट में गर्मी पड़ती है। आदमी के मिजाज को कुछ खाने बनते हैं और कुछ खाने नहीं बनते हैं, हर एक की तासीर अपनी अपनी है, लेकिन हैं सब खाने, कुछ ज्यादा कुव्वत रखते हैं अपने अंदर, कुछ हल्के फुल्के किस्म के हैं, जो हल्के फुल्के किस्म के हैं उनके खानों से खाना होने से तो इनकार नहीं हो सकता, वो भी फूड है, वो भी खाने की चीज है, वो भी खाना है। ऐसे ही जो दलाइल इस्लाम है उन दलाइल के मुख्तलिफ दर्जे हैं। तो उम्मत में आज जो तबका आज की शबे बारात की जो रात है इस रात की अहमियत और फजीलत से इनकार करता है और उसके लिए दलील सही का या कतई दलील का मुतालबा करता है वो गुमराही के रास्ते पे चलने वाला तबका है। इसलिए कि आज की रात की जो फजाइल और आमाल बयान किए जाते हैं उनका दर्जा फर्ज लेवल का नहीं है, जरूरी लेवल का नहीं है, तो फिर उनके लिए दलील की दलील भी इस दर्जे की होना जरूरी नहीं है। ये बुनियाद है और इसको जहन में रखने की जरूरत है। जैसा हुक्म होगा वैसी दलील तलब की जाएगी, उससे ऊपर की दलील अगर मांगी जाएगी तो फिर खुद समझने की और दूसरे को समझाने की जरूरत पड़ती है। अलगरज तो उम्मत का एक तबका वो है जो आज की रात के फजीलत से इनकार करता है, दूसरा तबका वो है जो आज की रात के आमाल को जरूरी करार देता है। आज ये करना जरूरी है, इसी तरह से इस तरह से नमाज पढ़ना साबित है, ये सुन्नत है वगैरह वगैरह। हालांकि अभी मुफ्ती साहब आपको बताएंगे कि क्या चीजें आज की रात में साबित हैं और क्या साबित नहीं है, यानी कौन से काम करने साबित हैं और कौन से काम साबित नहीं है। तो जो काम साबित नहीं है, जो काम सुन्नत नहीं है, जो जिन कामों का सबूत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है उनके बारे में ये समझ लिया गया कि ये भी हुज़ूर से साबित हैं, ये करने के काम हैं, तो जो साबित नहीं है उसको साबित मान लिया गया, ये गलती हुई। तो एक तबका वो था जो इसकी फजीलत के मानने का भी मुनकिर था, दूसरा तबका वो है जो सुन्नत नहीं है उसको भी सुन्नत मानने पर जिसको इसरार है, तीसरा तबका वो है जो फजीलत को तो मानता है और आज की रात के अंदर जो आमाल होने चाहिए उनको मुस्तहब के दर्जे में, मुबाह के दर्जे में, तरगीब के दर्जे में उनकी भी बात कहता है। तो फजीलत का इनकार भी गुमराही है और मुस्तहब कामों के भी ज़रूरी होने पर इसरार गुमराही है, और इन दोनों के रास्ते के दरमियान में जो रास्ता है वो रास्ता सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, एतदाल व इक्तिसाद वाला रास्ता है, यही उम्मत मुस्लिमा का रास्ता है। तो आज की रात की फजीलत के सिलसिले में अइम्मा इकराम और असलाफ़ उम्मत सब के सब मुत्तफिक हुए हैं और सब ने आज की रात के अंदर इबादतों का अहतमाम किया है, किताबों के अंदर उनका अहतमाम करना साबित है। आज की रात को लैलतुल हयात कहते हैं, लैलतुल इहया कहते हैं, जिंदा जिंदगी की रात, जिंदा करने की रात। असल में इस्लाम ने यह तसव्वुर दिया है कि जो अल्लाह की याद करने वाला है वो जिंदा है, जो अल्लाह को भूलने वाला है वो मुर्दा है। आज की रात में खुसूसियत से अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो रात में किया जाता है तो ये रात जिंदगी की रात है। उर्दू में इसका तर्जमा जागने की रात से करते हैं और अरबी में इसका तर्जमा हयात और इहिया से करते हैं। जागना तो सोने की जिद है, हयात तो मुर्देपन की जिद है। तर्जमा करने से हमारे फिर मिजाजों के अंदर, जहनियतों के अंदर उस तर्जमे का असर आ गया। जागने का मतलब हम समझ लिए बस जागना, वो जागना इबादत में तो भी हो या अल्लाह की नाफरमानी में तो भी हो, हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आज की रात में जागना चाहिए, जागने की रात है। तो जागने का मतलब इस्लाम वाला लेना है, हमारा अपना नहीं। इस्लाम में जागना क्या है, यानी जिंदगी, जिंदगी का ताल्लुक और हयात का ताल्लुक इस्लाम ने रखा है जिक्रुल्लाह से, इबादत से, बंदगी से, दीनी उमूर से। तो जिसके अंदर अल्लाह का जिक्र होगा, जो आज की रात में अल्लाह का जिक्र करेगा या कम से कम लायानी वगैरह से, गुनाहों से महफूज रहेगा, वो बंदा अगर जागेगा इस नीयत से तो उसकी उसकी ये रात लैलतुल हयात और लैलतुल इहया है। और जो जाग तो लेगा, सोएगा नहीं, लेकिन अपने वक्तों को बर्बाद करेगा, वैसे ही गपशप में लगा हुआ है, होटलिंग हो रही है, बाहर इधर उधर सैर को निकल गए हैं या घर के अंदर बैठे हुए हैं और फोन में, कंप्यूटर में, टैबों में लगे हुए हैं, गेम्स चल रही हैं, गुनाह के दूसरे काम हो रहे हैं, ये सारे काम अगर हो रहे हैं तो ये लैलतुल हयात नहीं, उस आदमी के वास्ते लैलतुल ममात है, उस आदमी के वास्ते लैलतुल इहया नहीं, लैलतुल इमात है, क्योंकि वो अपने दिल को मुर्दा कर रहा है गफलत की वजह से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहे थे। जो रातें खुसूसियत के साथ में एहतमाम की, इबादत का एहतमाम करने की होती हैं, जो जगहें अपने अंदर कुछ खुसूसियत रखती हैं, उन जगहों पर और उन वक्तों में नेकी की जाती है तो उस नेकी का सवाब भी बढ़ जाता है, गुनाह किया जाता है तो उसकी संगीनी भी बढ़ जाती है। बैतुल्लाह के अंदर, हरम के अंदर जाके अगर एक नमाज पढ़ेंगे तो 1,00,000 नमाजों का सवाब है, और अगर गुनाह करेंगे तो क्या सिर्फ 1 गुनाह मिलेगा, ظاہر سی بات ہے جگہ کا اثر تقدس کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہوا تو گناہ کی سنگینی اور شدت میں بھی ضرور اضافہ ہوگا. تو آج کی رات کا جو وقت ہے اس کے اندر بھی اہتمام کی ضرورت ہے عبادتوں کے اور خود کو لایعنی سے بچانے کی. یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے آج کے دور میں کہ انتہائی ہم لوگوں کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دینی لائن میں لگے ہونے کے باوجود, حافظ قرآن ہونے کے باوجود, عالم دین ہونے کے باوجود, مفتی شرع متین ہونے کے باوجود, غفلت کی اور ذکر اللہ سے غافل رہنے کی اور دینی جماعتوں سے وابستہ ہونے کے باوجود, دینی حلقوں سے جڑے ہوئے ہونے کے باوجود ایسے ایسے معصیتوں میں منکرات میں مبتلا ہیں کہ بس کہا نہیں جا سکتا. اور اس پر افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. تائبوں کے اندر جو کام ہوتے ہیں, جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, سنی جاتی ہیں, دیکھنے میں آتی ہیں, سننے میں آتی ہیں, اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, وقت اس کے اندر گھنٹوں صرف کیے جاتے ہیں, اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. توبہ کہاں سے کرے گا کوئی؟ تو اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی نسلوں کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے. ہم لایانی میں جو لگ گئے ہیں, آج سے پہلے بھی دنیا میں لوگ بستے تھے, جب یہ چیزیں دنیا میں نہیں ہوتی تھی اس وقت بھی لوگ رہا کرتے تھے, زندگی گزارا کرتے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ زمانے کے ساتھ میں تقاضے اس کے بڑھ جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں اور اس کی رعایت کرنا پڑتا ہے, لیکن تقاضے بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ گناہ بھی شروع کر دیے جائے. مجاہدہ بڑھ جاتا ہے. تقاضے اگر اس طرف کے آنے لگے کہ آج کے زمانے کی یہ بھی ضرورت ہے, یہ بھی ضرورت ہے, یہ بھی ضرورت ہے, تو اس سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کے واسطے محنت خوب کرنا پڑتا ہے, خود کو تھکانا پڑتا ہے. خود کو آرام دینے کے لیے ہم یہ سب کر دیتے ہیں. تو مجاہدے سے ہم خود کو بچا رہے ہیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم بھی آرام پسند, اولاد بھی آرام ہی نہیں معصیت پسند, اور جو آج معصیت پسند ہے آئندہ ایمان پسند تھوڑی باقی رہے گی. تو آج کی رات جو لیلۃ الحیات ہے اور لیلۃ الاحیاء ہے, اس کو حقیقی معنی میں زندہ رکھنے کی, زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ زندہ ہوتی ہے ذکر اللہ سے. اور آج کی رات لیلۃ الکفارہ ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے ہیں, کفارہ کر دیتے ہیں, اس لیے یہ لیلۃ الکفارہ ہے. لیلۃ رفع الاعمال, اعمال بندوں کے اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں, سال بھر کا ریکارڈ لے جایا جا رہا ہے اللہ کے پاس بندوں کا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی کے پوچھنے پر کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور مہینوں میں اتنی کثرت نہیں فرماتے, کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, یہ اس وجہ سے ہے کہ شعبان کے مہینے میں بالخصوص 15ویں شب میں بندوں کے اعمال لے جائے جاتے ہیں اللہ کے پاس. میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے نام عمل پیش ہوں میں اس وقت روزے دار ہوں, روزے سے رہوں, اس لیے میں کثرت سے روزے رکھا کرتا ہوں. تو یہ لیلۃ رفع الاعمال ہے, یہ لیلۃ التقسیم ہے, تقسیم والی رات ہے. کیا چیز تقسیم ہوتی ہے؟ جو چیز تقسیم ہونے کے قابل ہے وہ تقسیم ہوتی ہے. زندگی, موت, عزت, ذلت, بیماری, شفا, دولت, فقر, مالداری, ناداری, عزتیں, ذلتیں, ساری چیزیں جو دنیا میں دیے جانے کے قابل ہیں وہ ساری چیزیں آج کی رات میں تقسیم ہوتی ہیں. اندازہ کیجئے کہ گزشتہ کیا فیصلے ہوئے ہوں گے, جو کرونا کے باعث لوگوں کی جو اموات ہوئی ہیں, آئندہ کیا فیصلے ہونے والے ہوں گے. تو اللہ سے آج مانگ مانگ کر کے اپنے حق میں خیر کے فیصلے کرانے کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے. لیلۃ التقسیم ہے. ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ رزق کا مطلب ہے کھانا, پیٹ میں جانے والی چیز. رزق کا مطلب ہے جو چیز دیے جانے کے قابل ہے وہ, اس کے اندر ہوا, علم, عقل, جو ضرورت کی چیز ہوگی انسان کی, جو سہولت کی چیز ہوگی انسان کی, وہ سب رزق ہے. تو رزق تقسیم ہوتا ہے آج کی رات میں بندوں کا. اور آج کی رات لیلۃ المغفرہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آج کی رات میں حق تعالی قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں, انہیں جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب کا. ویسے تو سارے عرب بکری پالنے والے تھے, بکریاں سبھی کے پاس ہوتی تھیں جو بھی اہل استطاعت ہوتے تھے, لیکن کچھ کچھ قبیلوں کی خاصیتیں ہو جاتی ہیں اور طرح سے کہ یہ چیز سب کرتے ہیں, ان کے پاس کثرت سے ہوتی ہے. बकरियां सभी पालते हैं लेकिन उनके पास बकरियों की कसरत है। तो आपने ये नहीं फरमाया कि कबीले बनू कल्ब के बकरियों के बराबर, फरमाया उनके पास जो इतनी बकरियां हैं कि पहाड़ को उनकी तादाद छुपा लेती है, उनके बालों के बराबर हक ताला मगफिरत फरमा देते हैं इंसानों की, और उनके बालों के बराबर हक ताला लोगों को जहन्नम से खलासी अता फरमाते हैं, इसलिए इसको लैलतुल मगफिरा फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात में इस कदर हक ताला माइल बकरम होने के बावजूद बाज लोग आज की रात में भी मगफिरत से हक ताला के इस इनाम से महरूम रह जाते हैं। उनमें एक तवील फहरिस्त है उनकी, यहाँ के माहौल के लिहाज से उस फहरिस्त में जो जो चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं, सबसे पहले तो आता है जो हर माहौल में जिक्र करने की चीज़ है कि मुशरिक उससे महरूम है। शिर्क एक तो होता है अल्लाह के साथ में किसी को अल्लाह मखलूक में से किसी को अल्लाह जैसा समझना, मखलूक में से किसी को अल्लाह जैसा समझना, इसे मगफिरत है। यहाँ के लोग समझते हैं, दुनिया के लोग समझते हैं, दूसरे मजहब वाले, कि गुनाहों के बख्शने का इख्तियार बंदों को है। मजहब इस्लाम में गुनाह के बख्शने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन बख्श सकता है गुनाहों को। तो ये पोपों को, पादरियों को, गिरजाघरों के बड़ों को, पेशवाओं को, इमामों को, किसी को भी गुनाह बख्शने का इख्तियार इस्लाम के अंदर नहीं है। उन्हीं के असर से और हिंदुवाना असर से मुसलमानों के अंदर भी ये ज़हनियत आ गई है कि वो अवलिया की करामात को, अंबिया के मौजिज़ात को, सालिहीन के साथ अल्लाह की जो मदद और नुसरत होती है उन वाक़ात को ये समझ लेते हैं कि ये वाक़ात अल्लाह नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, और ये चीज़ें इनके ऊपर ज़ाहिर नहीं हो रही है, खुद ये ज़ाहिर कर रहे हैं। उनके साथ होने वाले वाकयात में अल्लाह के फेल को देखना ये ईमान है, ये तौहीद है, और उनके साथ होने वाले वाकयात को खुद उनसे मंसूब करके ये समझना कि ये खुद करते हैं, ये शिर्क है। अंबिया के बारे में, सिद्दीकीन के बारे में, शहीदों के बारे में, औलिया के बारे में लोगों के गलत 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 अकीदे होते हैं कि फ़लां वली, फ़लां शहीद, फ़लां पीर के नाम लेकर के दुआ करो, फ़लां से ये चीज़ मांग लो, फ़लां से मांग लो, यानी बंदों से, मखलूक से मांग लो, ये जो है ये शिर्क है। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुशरिक होगा अल्लाह जैसा किसी को समझेगा मखलूक में से किसी भी एतबार से, वो बंदा आज की रात में भी मगफिरत के आम होने के बावजूद मगफिरत से महरूम रहेगा। फरमाया कि कीना रखने वाला मैं आज की रात में मगफिरत से महरूम है। कीना क्या होता है? किसी की तरफ से तकलीफ पहुंचने पर दिल में एक तो आता है रंजिश, तकलीफ का असर, तभी असर होता है। इंसान पत्थर का, इंसान का दिल पत्थर का तो बना हुआ है नहीं, कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो तकलीफ तो पहुंचेगी, कोई सुई चुभाएगा तो तकलीफ तो होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई तकलीफ दिए जाए और इंसान बस मुझे तकलीफ होती ही नहीं, ये तो ढटाई हो जाएगी किस्म की, या हकीकत का इनकार हो जाएगा। तो जो तकलीफ पहुंचती है उसका असर अपनी जगह है, वो उसको कहते हैं रंजिश, रंजिश पर मुआखजा नहीं है, लेकिन किसी की तकलीफ पहुंचने पर उससे इंतकाम का जज्बा दिल में पालना, यह है कीना, उसकी बुराई चाहते रहना, यह है कीना। आप सल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन से कीना रखेगा, जिसके दिल में कीना है, आज की रात में वो मगफिरत से महरूम रहेगा। वालदेन का जो नाफरमान है वो मगफिरत से महरूम है। वालदेन का इस्लाम में जो हक बयान किया गया है, अल्लाह रसूल के बाद में उन्हीं का हक सबसे मुकदम किया गया। शिर्क जैसे अजीम गुनाह के साथ में दूसरे नंबर पर इसे कहा गया कि वो वालिदैन की नाफरमानी है। तौहीद की तालीम देने के बाद दूसरे दर्जे में जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने, वो वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी है, माँ की भी और बाप की भी, उनकी खिदमत भी, उनकी इताअत भी, उनकी बात मानना भी, उनकी अजमत भी, उनकी मोहब्बत भी, उनका एहतराम भी, उनकी राहत और सहूलत का ख्याल भी, ये सारी चीज़ें उनके हकूक में आती हैं। इस माहौल में, यहाँ के माहौल में रहने वालों को बड़ों के आदाब, इकराम, अजमत, वक़ार, इन चीज़ों का कोई अता पता नहीं होता, सिखाने के बावजूद यहाँ की मखलूक सीखती नहीं है। जो चीज़ देखने में आ रही है वो बयान किया जा रहा है। दुआ करने की भी सख्त ज़रूरत है और तवज्जो करने की भी सख्त ज़रूरत है कि इनके दिलों में हम इस बात को कैसे उतारें, हम अपने बच्चों अपने दिलों में कैसे उतारें, अपने बच्चों के दिलों में कैसे उतारें, तो बड़ों के क्या हुकूक व आदाब होते हैं और इस्लाम ने उनके लिए इकराम का क्या हक रखा हुआ है, बिलखसूस वालिदैन का। बड़े भाइयों जैसा भी बाज दफ़ा सलूक नहीं होता वालिदैन से, बड़ी बहनों जैसा सुलूक नहीं होता, पड़ोसियों जैसा भी सुलूक नहीं होता, उनसे बदतर सुलूक वालिदैन के साथ लोग करते हैं। इस्लाम में वालिदैन का बड़ा हक है, उनकी जान में भी और माल में, औलाद की जान में भी औलाद के माल में भी वालिदैन का हक है। अंता व मालुका लि अबीका वली, जो हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था, तुम भी और तुम्हारा माल भी, यानी जान और माल दोनों में तुम्हारे बाप को तुम पर तसर्रुफ का हक है। इसमें एक चीज जहन में रखने की है, यहां भी हर चीज में जैसे इफरात व तफरीत होती है, गुलू होता है, यहां भी होती है, वालिदैन की बात कहां तक माननी चाहिए और कहां नहीं। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कोई भी हो अल्लाह की नाफरमानी के लिए बोलेगा तो नहीं सुनेंगे। उस्ताद हो, पीर हो, वालिदैन हो, और जब अल्लाह की नाफरमानी को छोड़कर बाकी सख्त से सख्त बात भी अगर वो कहेंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। ये एक उसूल है, जायज हर काम के अंदर उनकी इताअत की जाएगी। अब इताअत के दर्जे होते हैं, कभी वो इताअत फर्ज दर्जे की होती है, कभी वाजिब, और कभी जायज सिर्फ मुबाह, के बंदा ना भी करे तो गुनाह नहीं होता, मुआखजा नहीं होता उस पर। तो अलगरज वालिदैन की नाफरमानी करने वाला आज की रात में मगफिरत से महरूम रह जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुत्ता पालने वाला भी आज की रात में मगफिरत से महरूम रहता है। माहौल के असरात आदमी पर मुरतब होते हैं। हम जिस जगह रहते हैं उस जगह लोगों की आदत है, जो गैर जो बिरादरान वतन है उनकी आदत है, उनके पास ये कोई बुरी बात नहीं है। उनके असर से हमारे दिलों में इस काम की नफरत कम होती चली जाती है, उसमें कमी आने नहीं देना है। और बाजों में नफरत की में कमी नहीं आती बल्कि मोहब्बत हो जाती है और खुद भी इस काम पे लग जाते हैं। ये तो हर इंतहाई दर्जे का बुरा अमल है, और इसी के बारे में फरमाया गया कि जो कुत्ता पालेगा वो आज की रात में मगफिरत से महरूम रहेगा। टखनों के नीचे जो अपना इजारबंद लटकाते हैं, रखते हैं बिना किसी मजबूरी और माजूरी के, ऐसे उनके लिए भी फरमाया गया कि वो आज की रात में मगफिरत से महरूम। अजीब गुनाह है, कोई लज्जत इसमें नहीं है, इसके बावजूद उम्मत इसको करने के लिए तैयार नहीं। मस्जिद को आते हैं तो सीढ़ियों के पास ठहर के पहुँचे चढ़ा लेते हैं, या सफ में ठहर के पहुँचे चढ़ा लेते हैं, और नमाज मुकम्मल होने के बाद यहीं पर या सीढ़ियों के पास जूता चप्पल पहनते हुए वो नीचे करके जाते हैं। ये वो अमल है कि नेकी करते हुए नेकी का सवाब तो मिलेगा लेकिन इसका गुनाह भी अपनी जगह मिलेगा, इससे बचने की खास जरूरत है। हमें वजह नहीं समझ में आती, आपको वजह समझने का पाबंद किया भी नहीं गया। ये नहीं बोला गया कि ये हुक्म क्यों है ये जान के इस पे अमल करो, ये बोला गया ये काम करो तो ये करना है। क्यों करना है? ला युसअल अम्मा यफअल वहुम युसअलून, तुमको पूछने का हक नहीं है, तुम मखलूक हो, हमने तुमको पैदा किया तो हम तुमसे पूछेंगे, तुमने हमको पैदा नहीं किया जो पूछोगे कि ये काम क्यों करें। एक दूसरे से पूछने का हक दिए तो समझ लिया गया कि अल्लाह से भी पूछ सकते शायद, नहीं अल्लाह से नहीं पूछ सकते। ला युसअल अम्मा यफअल, वो कुछ भी करें, अमन्ना सद्दकना, ठीक है हमारी समझ में आएगा तो भी, नहीं समझ में आएगा तो भी, वहुम युसअलून, हाँ वो तुमसे पूछेंगे और उनको पूछने का हक है। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तस्वीर रखने वाला भी आज की रात में मगफिरत से महरूम रहेगा। ये कैसा गुनाह है आज के जमाने में, अजीब तस्वीर साजी, तस्वीरें बनाने, तस्वीरें रखने का, बाज इसको हराम समझते हुए कर जाते हैं काम, बाज हराम नहीं समझते हुए हलाल की तावील करके, जायज़ की तावील करके, उलमाए दीन की आड़ लेके ये काम कर बैठते हैं। बाजों को हलाल और हराम की कोई तफरीक ही नहीं चाहिए, उनको बस अपना ये काम करना है। फ़ोनों के अंदर जो तस्वीरें ली जाती हैं, जो फोटो पिक्चर्स लिए जाते हैं, जानदार की जो भी तस्वीर है इस्लाम के अंदर वो हराम है। ज़रूरत के मौके से उसकी इजाज़त दी गई है। हमारा अगर मोबाइल जो डेटा है उसको हम चेक करने लगे, हमारे फ़ोटो, हमारे बच्चों के फ़ोटो, रिश्तेदारों के फ़ोटो, फ़लाँ मौके से फ़ोटो, सुबह के फ़ोटो, दोपहर के फ़ोटो, शाम के फ़ोटो, खाने के फ़ोटो, हर जगह जाने के फ़ोटो, لعنت والا یہ کام ہے. قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائیں گے جاندار کی تصویر بنانے والے سے اس میں روح ڈال کے دکھاؤ, اور جب تک روح اس میں نہیں ڈالی جائے گی اس وقت تک عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا. روح ڈالنے کا اختیار یا یہ کام یا یہ تکنیک کس کو آتی ہے مخلوق میں سے؟ قل الروح من امر ربی, امر رب میں سے ہے وہ, امر مخلوق امر خلق میں سے نہیں ہوتا, ہو بندے کر بھی نہیں سکتے, مطلب یہ کام ہوگا نہیں, وہ بندہ عذاب میں مبتلا رہے. اشد الناس عذاب یوم القیامۃ المصبرون, سخت ترین عذاب, سخت ترین عذاب. دنیا کی آگ پہ تھوڑی دیر ہاتھ تاپتے ہیں دو فٹ کی دوری سے, تھوڑا سا قریب لے جا کر کے دیکھیں اور پانچ منٹ اس کو گوارا کریں, اگر گوارا ہو جائے تو پھر اس کام کی ہمت کریں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کی سنگینی کو سمجھیں. امام غزالی علیہ الرحمٰ نے فرمایا آج کی رات توبہ کی رات ہے. توبہ کے مطلب میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ جن چیزوں سے توبہ کرنا ہے ان کی قباحت کو سمجھو, کہ یہ کام وہ ہے جو ہمارے مقصد تخلیق کے خلاف ہے, یہ کام وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں, یہ کام وہ ہے جو اللہ کی خوشی میں آڑے آنے والے ہیں. دنیا کے اندر, دنیا اور آخرت میں جو ایک نعمت ہے اور باقی ساری نعمتیں جس کے سامنے ہیچ ہیں, وہ حق تعالیٰ کا دیدار ہے, حق تعالیٰ کی ملاقات. اسی ایک کام کے لیے ہم سب کو پیدا کیا گیا. اگر پوچھا جائے کہ ہم وہ کون سی راحت ہے, وہ کون سی نعمت, ایک نعمت بتاؤ کہ جو ساری نعمتوں کی جو جامع ہے, جس کے بعد کسی اور نعمت کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی, وہ ہے حق تعالیٰ کا وصال, حق تعالیٰ کا دیدار, ان کو دیکھنا. اس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا کہ اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کر کے آؤ, اپنے دل کے آئینے کو چمکا کے آؤ اور اس کے اندر یہ قوت بھر کے آؤ کہ مجھے دیکھ سکو. یہاں بھیجا گیا. گناہ کے جتنے کام ہیں یہ دل کو آئینہ ہونے سے روکتے ہیں. اس کے اندر جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے, ویسے ہی گناہ دل کو میلا کر دیتے ہیں. تو وہ جو چمک اس کے اندر آنا ہے, اللہ کے دیدار کی قوت اس میں پیدا ہونا ہے, وہ قوت پیدا ہونے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں گناہ. امام غزالی علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ توبہ کے اندر سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جو کام گناہ کے ہیں ان گناہ کے کاموں کو گناہ سمجھنے اور اپنے مقصد تخلیق میں مضر اور مخل ہونے کو سمجھنا ضروری. کینہ رکھنے کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ کریں گے کیسے؟ والدین کا احترام نہیں کریں گے اور احترام کو ضروری نہیں سمجھیں گے تو بے احترامی کو گناہ سمجھے گا کون اور توبہ کرے گا کیسے؟ تصویر کے رکھنے کو ٹخنوں سے نیچے اظہار وغیرہ کے پہننے اور پہنچانے کو کوئی گناہ نہیں سمجھے گا تو بچے گا کیسے, توبہ کرے گا کیسے؟ بے توبہ مرے گا تو جنت میں اولین داخلہ نصیب کیسے ہوگا؟ یہاں ایک شبہ بعض حضرات کرتے ہیں کہ ٹخنوں کا سے اوپر جو پائجامہ پہننا ہے, اظہار بند جو بھی آپ پہنیں, وہ رکھنا ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے, ٹخنے نہیں چھپانا, یہ اسلام کا حکم ہے. تو موزے وغیرہ کے اندر بھی تو پہنے جاتے ہیں اور ٹخنے چھپ جاتے ہیں, اس کی تو وہ تو حدیث سے ثابت ہے اور سنت ہے, وہ کیسے وہ بندہ بھی پھر اس وعید کا مستحق ہوگا ضرور؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موزے پہننا ٹخنے چھپانا ثابت ہے تو خدا نہ خواستہ کیا معاذ اللہ آپ علیہ السلام بھی, معاذ اللہ صبر, معاذ اللہ, کیا اس قسم کی بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ما اسفلا من الکعبین من الازار فی النار, اسفلا مطلب جو کپڑا اوپر سے نیچے آئے, اسفال کا مطلب ہوتا ہے یہ جو پردے لٹک رہے ہیں اوپر سے جو نیچے آتے ہیں اس کو عربی میں اسفال بولتے ہیں. اور جو موزے پہنے جاتے ہیں وہ اوپر سے نہیں پہنے جاتے, کوئی بھی انسان دنیا کے اندر یہاں سے موزے, جہاں سے پیجامہ پہنتا ہے وہاں سے موزے نہیں پہنتا, سب تلبے کی پنجے کی طرف سے, انگلیوں کی طرف سے پہنتا ہے. حدیث شریف میں آیا اوپر سے پہنے جانے والا کپڑا اگر وہ ٹخنوں کو چھپا دے گا تو پھر وہ اس عذاب کا مستحق ہوگا. تو الغرض یہ جو گناہ ہیں ان گناہوں کی سنگینی کو اور ان کے گناہ ہونے کو اور اللہ کی نافرمانی ہونے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کی رات لیلۃ المغفرہ ہے اور سارے ہی گناہوں سے ہم کو توبہ کرنا ہے. کوئی انسان, کوئی مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, کہ سب کے سب خطا کار ہو, تم سب سے قصور ہوگا, ہاں یہ کر لیا کرو اچھے بننے کے لیے کہ توبہ کرتے رہو, قصور تو سب سے ہوگا, اچھے بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خیر الخطائین التوابون, توبہ کرتے رہو. तौबा एक बार की, फिर गुनाह हो गया, फिर तौबा करो, फिर गुनाह हो गया, फिर तौबा करो, फिर गुनाह हो गया, फिर तौबा करो। बाजा बाजा हरांचे हस्ती बाजा, गर कुफ्रो गबरो बुतपरस्ती बाजा। कुछ भी गुनाह अगर हो गया हो, बड़े से बड़ा शिर्क हो गया, कुफ्र हो गया, मासियत हो गई, गुनाह कबीरा हो गया, बाज आ जाओ। ये दरगह मा दरगह नाउमीदी ने, ये नाउमीदी की बारगाह नहीं है, ये अल्लाह की बारगाह है। अगर 100 बार तौबा शिकस्त बाजा, कि 100 बार भी अगर तौबा तुमने तोड़ दी है तब भी तुम बाज आ जाओ। अब ताला की मगफिरत का जो अंदाज है वो गाफिरुज जम भी हैं, गुनाह को माफ करते हैं, गफूर भी हैं, सबको बख्शते हैं, गफ्फार भी हैं, बार बार बख्शते हैं, और वमैया फिर जुनूब इल्लल्लाह, वही अकेले बख्शते हैं। एक आदमी गुनाह करे उसको बख्श दे, दूसरे को ना बख्शे तो वो गफूर नहीं होता। आदमी ने खता की, तौबा की, उसको माफ कर दिया गया, दोबारा फिर वही खता की, उसको माफ नहीं करें, वो गफ्फार नहीं है। तो हक ताला गाफिरुज जम भी हैं, गुनाह हो जाए माफ फरमा देते हैं, गफूर भी हैं कि एक को नहीं सबको माफ करते हैं, गफ्फार भी हैं, बार बार तौबा टूटती है फिर जोड़ के दे देते हैं, और अकेले खुद माफ करने का इख्तियार रखते हैं। ये बहुत बड़ा एहसान है उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, इंसानों के ऊपर, कि हक ताला मगफिरत फरमा देते हैं और हक ताला ही इसका इख्तियार रखते हैं। वरना इंसानों को यह इख्तियार, मखलूक को यह इख्तियार सौंपने के बाद में दुनिया के फसाद की जो कहानियां और दास्तानें और वाकयात बने हैं, और उसकी उससे तारीख, उन वाकयात से तारीख के औराक जो पटे पड़े हैं, और उसकी वजह से दुनिया के अंदर जिस किस्म का फसाद रोनुमा हुआ है, उसका कोई अंदाजा करना मुश्किल है। जिन लोगों के पास में ये तसव्वुर है, उन लोगों के पास में ये होता था, मखलूक बख्शती है लिहाजा मखलूक से जाके अपने गुनाहों का एतराफ करो, उनके सामने गुनाह एतराफ किए तो वो गुनाह छुपाने के वास्ते फिर अपने मतलब के काम उनसे लेते थे। और ऐसे ऐसे शर्मनाक हयासोज काम इसके पर्दे में, इसकी आड़ में अंजाम दिए गए हैं कि उनको जबान पे लाते हुए भी शर्म महसूस होती है। तो अलगरज आज की रात जिंदा करने की रात है, अल्लाह के जिक्र की करने की रात है, अपने वक्त को काम में लाने की रात है, और अल्लाह से तौबा करके और अपनी ज़रूरत की और सहूलत की हर चीज़ दुनिया की और आखिरत की मांगने की रात है। अब ताला हम सबों के लिए आज की रात में हर किस्म के खैर के फैसले फरमाए, हर किस्म के शर से हिफाजत के फैसले फरमाए, ज़िंदगी के अंदर, इल्म के अंदर, ईमान के अंदर, अमल के अंदर, रिस्क के अंदर, आलो औलाद के अंदर बरकत के फैसले फरमाए। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.